حمده ونصلي ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گزشتہ اتوار ہم ماہ رجب کی برکات پر گفتگو کر رہے تھے، اس کی فضیلت کو ہم نے ڈسکس کیا. اس مہینے میں ملنے والے انعامات اور رحمتوں کو ڈسکس کیا. اس مہینے میں جہاں نیکی اور اچھے کاموں کے لیے ریوارڈ بے پناہ ہیں، وہاں اس مہینے میں کی گئی خطاؤں اور گناہوں کی سزا بھی دونی ہے. رجب کے مہینے میں ہم ویسے تو ہمیشہ ہی گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصی طور پر ہم گناہوں سے دور رہیں اور اللہ کو پکارتے رہیں. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما کے ہم پر اپنی رحمت نازل کر دے گا. رجب کے مہینے میں کی گئی دعائیں بڑی جلدی مستجاب ہوتی ہیں. اس مہینے میں خصوصی طور پہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ہم دعائیں کریں. جب دعاؤں کی بات میں کرتا ہوں تو میں آپ کی توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طرف دلانا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں. ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات جانواز پر کھڑے ہو کے رو رو کے اللہ کے حضور دعائیں مانگتے تھے. اس قدر کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی اور ریش مبارک آنسوں سے تر ہوتی تھی. ہمیں ایک چیز اس سلسلے میں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس کثرت سے دعائیں مانگنے کے باوجود کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کوئی دنیاوی آرام و آسائش، دنیاوی حاجات کے پوری ہونے کی دعا کی ہو اللہ کے حضور. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پوری طرح علم تھا کہ رب کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت ایک مری ہوئی بکری کے سڑوے گوشت پر ایک بال جو ہے، اس کا بکری کا ایک بال، اس دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک، اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس مری ہوئی گلی سڑی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگتے رہے جو اس کے نزدیک کچھ قدر و قیمت رکھتی ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اس کے اندر کہیں کوئی سوائے دنیا کی کوئی اور چیز ہوتی ہی نہیں، جبکہ اللہ سے اور بہت سی چیزیں مانگنے کو ہیں. ہم اللہ سے رزق مانگتے ہیں جبکہ رزق دینے کا نہ صرف اس نے وعدہ کیا بلکہ دعویٰ بھی کیا. جب وہ یہ رب تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں رازق ہوں تو اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں، اس کا وعدہ بھی ہے اور اس کا دعویٰ بھی ہے. رب تعالیٰ سے بہتر اپنا وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں. اس نے اپنی مہربانی کو ایکسپلین کیا کہ وہ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے، اس کا بھلا چاہتا ہے. تو جب رب نے اپنی یہ ایک بار فرما دیا تو ہمیں یہ نہ صرف یقین ہونا چاہیے بلکہ یہ کانفیڈنس بھی ہونا چاہیے کہ رب اپنے وعدے کا سچا ہے اور وہ اپنا وعدہ پورا کر کے رہتا ہے. تو پھر ہم اس سے وہ چیزیں کیوں نہ مانگیں جو واقعی مانگنے کی ہیں. ہم رب تعالیٰ سے اس کا رحم مانگیں، اس سے بخشش مانگیں، ہم اس سے اس کی رحمتیں مانگیں، ہم اس سے اس کی دوستی مانگ لیں. اور اگر ہمیں اللہ توفیق دے اور یہ ظرف عطا فرمائے تو ہم رب سے خود اس کی ذات مانگ لیں. ایسی بڑی ہستی سے جو سب سے بڑی ہے، جو سب سے زبردست ہے، اس سے اگر ہم کچھ مانگیں جس کے قبضے میں پوری کائنات کے خزانے ہیں، پوری کائنات اس کے قبضے میں ہے، تو اتنی بڑی ہستی سے جب ہم کچھ مانگیں تو کم از کم اس کے شایان شان تو ہو. اور رب کے شایان شان صرف اس کی اپنی ذات ہے. ہم اس کی ذات اس سے مانگ لیں کہ یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے، تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنے صاحبزادگان کے ساتھ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں دوران طواف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، جو اس وقت امیر المومنین بھی تھے، ایک آدمی کی آہ و بقا سنی، ایک آدمی کی چیخ و پکار سنی جو رب کے حضور فریاد کر رہا تھا اور بہت پردرد آواز میں رو رہا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ذرا دیکھو یہ کون شخص ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور اس آدمی تک جا پہنچے جو اس درد کے ساتھ رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا. اس سے کہا کہ تمہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ یاد فرما رہے ہیں. تو وہ صاحب اٹھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ تک آن پہنچے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو عرض کیا کہ یا امیر المومنین، میں منازل بن لاحق ہوں. تو پوچھا کہ اتنے درد سے کیوں رو رہے ہو، کیا دکھ ہے تمہیں؟ کہا کہ حضور دیکھیے، میں کس قدر کڑیل جوان ہوں، لیکن میری دائیں طرف لکڑی کی طرح اکڑی ہے، مفلوج ہو چکی، جس کو ہم فروزن باڈی کہتے ہیں. تو پوچھا کیسے ہوا یہ واقعہ؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، میں چڑھتی جوانی کے دور میں تھا اور دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گیا، گناہ کرنے لگا. میرے والد مجھے روکا کرتے تھے، لیکن میں نے ایک نہیں ان کی سنی. جب میں گناہوں میں ڈوبتا چلا گیا تو میرے والد نے پھر مجھے میری مار پیٹ شروع کر دی اور سختی سے روکنا شروع کیا. میں نے اپنی بدبختی کو آواز دی اور جواب میں اپنے والد کو میں مارنے لگا، جو بوڑھے تھے، اور وہ میری طاقت کے سامنے بہت ہی ضعیف जिसकी वजह से उन्हें चोटें बहुत आती थी। तो मार खा खा के मेरे वालिद मुझसे एक दिन तंग आ गए और फरमाया कि मैं सारी उम्र रोजे रखूंगा और मैं अल्लाह से अपना हक मांगूंगा। तो मेरे वालिद ने मुसलसल रोजे रखने शुरू किए। एक ही हफ्ते के बाद हज का जमाना आ गया और मेरे वालिद हज के लिए चले गए और खाना काबा का गिलाफ पकड़ के रब के हजूर फरियाद की, या बारी ताला, तेरी जात सबसे ताकतवर है, लोग तुझसे अपनी हाजतें मांगते हैं। तू जो इस घर का मालिक है, जिस घर की तरफ लोग दूर दूर से हज के लिए आते हैं, मैं आज तुझसे अपना हक मांगता हूं, तू मनाजिल से मेरा हक ले ले। तो जो ही मेरे वालिद की जुबान से ये अल्फाज निकले, मेरी दाई साइड शल हो गई और उस दिन से मैं मफलूज हूं। फिर मैंने बाप से माफी मांगी और उनसे अर्ज की कि खाना काबा पर जहां आपने मेरे लिए बद्दुआ की थी, वहां जाके मेरे लिए दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात दिला दे और मैं अपने वालिद को भूरे रंग की एक ऊंटनी पर सवार करा के खाना काबा की तरफ चला। लेकिन रास्ते में किसी वजह से वो ऊंटनी बिदक गई और बिदक कर जो उछली तो मेरे वालिद ऊंटनी से गिरकर इंतकाल कर गए। तो मैं उस वक्त से इसी हाल में हूं। तो हजरत अली करम वजह ने कहा कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे और एक दुआ बताई जनाब मनाजिल बिन लाहक को, कहा कि ये पढ़ो, अल्लाह इसकी बरकत से तुम्हें ठीक कर देगा। वो दुआ मनाजिल बिन लाहक ने पढ़ ली और अल्लाह ने उन्हें शिफा दे दी, उनकी दाहिनी साइड जो मफलूज हुई थी वो ठीक हो गई। मनाजिल बिन लाहक का कहना यह है कि उसी रात को जब मैं सोया तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ तुम्हें मेरे चचाजाद भाई अली ने दी है उसे पढ़ो, इस दुआ में इसमें आजम पोशीदा है और जो शख्स रब को इसमें आजम का नाम लेके पुकारता है रब उसकी दुआएं कबूल करता है। और याद रखिए रजब का महीना था। वो दुआ मैं आपके सामने दोहरा देता हूं, अगर आपको वो लंबी है काफी, अगर आपको याद रह जाए तो इस रजब के महीने में वो दुआ पढ़िए और हर नमाज के बाद वो दुआ मांगिए। जो आपकी ख्वाहिश और मुराद है उसका तसव्वुर करके अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाइए और ये दुआ मांगिए और उसके आखिर पर जहां ये अल्फाज आते हैं कि तू मेरी मुराद आगे वो करने की, ये जो भी हो मुझे अता फरमा दे, बेशक हर चीज तेरे ही काबू में है। वो मेरी मुराद के बाद अपनी उस ख्वाहिश और अपनी उस मुराद और अपनी उस हाजत का नाम ले लीजिए। वो दुआ इस तरह से है कि तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए नमाज का सलाम पहनने के बाद, जैसे जिस तरतीब में भी आप अगर सलाम पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ लीजिए, उसके बाद दुआ शुरू करते हुए तीन बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए और अल्लाह की तरफ रजू करें ये कहते हुए कि ऐ अल्लाह, ऐ पोशीदा चीजों के जानने वाले, ऐ वो जात जिसकी कुदरत से आसमान बनाए गए हैं, ऐ वो जात जिसकी कुवत से जमीन बिछाई गई है, ऐ वो जात जिसके नूर जलाल से सूरज और चांद रोशन पुर नूर हैं, ऐ वो जात जिसकी तो जो हर पाक ईमानदार नफ्स की तरफ होती है, ऐ वो जो तरसा और हरासान लोगों के खौफ को तस्कीन देने वाली है, ऐ वो जात जिसके यहां मखलूक की हाजतें पूरी की जाती हैं, ऐ वो जात जिसने यूसुफ को गुलामी की जिल्लत से निजात दिलाई, ऐ वो जात जिसका कोई दरबान है कि उसको पुकारा जाए, ना उसके अलावा कोई रब है कि जिससे दुआ की जाए, जिसका करम और फजल बावजूद कसरत हाजत बढ़ता ही चला जाता है। मैं तुझसे दरख्वास्त करता हूं कि तू अपनी रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर नाजिल फरमा और मुझे मेरी मुराद अता कर दे। बेशक बिलाशुबा हकीकत में हर चीज तेरे ही काबू में है। ये दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से इस ख्वाब में अदा फरमाई थी और तलकीन फरमाई थी मनाजिल बिन लाहक को कि इसको पढ़ने वाले की कोई दुआ कोई हाजत रद्द नहीं होती। इसी में इसमें आजम पोशीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाला कोई लफ्ज हिकमत से खाली नहीं और उसमें कोई शुबा नहीं। आप बहुत अरसे से इसमें आजम की रट लगाए हुए थे, वो आज मैंने आपके सामने बयान कर दिया। ये दुआ मांगिए रब ताला से, इंशाल्लाह वो अपनी रहमत के सदके हाजतें पूरी करेगा आपके। ये रजब के महीने का है, अगली बार इंशाल्लाह ताला शाहबान और ज़िलहज के बारे में गुफ्तगू करेंगे। एक सवाल है जो खासा इल्मी है। बाज़ औक़ात ऐसा क्यों होता है कि हम जब किसी रूहानी शख्सियत या किसी साहिब मज़ार के पास जाते हैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं? ये अक्सर बेशतर जब रूहानियत का जिक्र होता है तो मैं एक बात यहाँ अर्ज किया करता हूँ कि इस राह में एक असूल और कानून ये है कि हम जब किसी के हाथ पर बैत कर लेते हैं, किसी के सिलसिले में दाखिल हो जाते हैं, तो दुआ के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शिद साहब ही के पास जाना चाहिए। मदद की दरख्वास्त सिर्फ और सिर्फ अपने मुर्शिद साहब ही से करना चाहिए। हाँ, अलबत्ता अज़राहे अकीदत और अज़राहे आउट ऑफ रेस्पेक्ट आप हर एक फकीर के पास जाइए और अगर आप में हिम्मत है तौफीक है तो उस फकीर की खिदमत भी कीजिए जाके, उसका अजर अल्लाह देता है। लेकिन कभी किसी दूसरे फकीर से दुआ के लिए ना कहिए और किसी दूसरे फकीर की दी हुई पढ़ाई ना पढ़िए। जिस तरह से दो मैग्नेट अगर हम इस तरह से जोड़ कर रख दें साथ साथ, और अगर हमने पोल्स के बारे में एहतियात न की हो तो दोनों अपने अपना मैग्नेटिज्म खो देंगे। अगर एक ही ताकत के हैं, अगर एक मैग्नेट मैग्नेट ज्यादा पावर का है, दूसरा मैग्नेट जरा कमजोर है, तो जो कमतर वैल्यू का मैग्नेट है उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ये फिजिक्स का एक असूल है। इसी तरह अगर हम ऐसे सिलसिले में जाते हैं जिसका ताल्लुक हमारे अपने सिलसिले से नहीं है, साहब मजार बहुत जबरदस्त बुजुर्ग हैं और मुझ जैसा कोई आदमी चला गया जिसके पास इल्म है ही नहीं, सुनी सुनाई बातों पर चल रहा है, तो जब वो वहां से वापस आएगा तो खाली हुआ हुआ चला आएगा। इसलिए कि उन साहिब मजार का जो इल्म है उसकी कुव्वत, अगर मेरे पास कोई थोड़ा बहुत इल्म मौजूद था तो उस पर गालिब आ गई है और फिर वो वाइप ऑफ हो गया। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि हमें ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। बहुत से बुजुर्ग हैं जो खुद इस मामले में बड़े मोहतात होते हैं और वो ऐसे मेहरबान होते हैं अपने पास आने वाले आदमी का खुद ही ख्याल करते हैं, उसको आने ही नहीं देते फिर, ताकि उसे नुकसान ना होने पाए। ये उनकी मेहरबानी है और उनकी अजमत और उनके जर्फ की बात है। मेरा ख्याल है कि एक वाकया छोटा सा आउट ऑफ प्लेस नहीं होगा अगर मैं यहाँ बयान कर दूं और इसमें कोई अपनी ज़ात की प्रोजेक्शन उसमें मकसद नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेरी ज़ात क्या है कुछ भी नहीं। होता मेरे साथ ये रहा कि जिस ज़माने में मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था तो टूरिंग मेरी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए। पेशावर भी आना जाना लगा रहता था तो बसा औकात में बाय रोड चला जाता था। वापसी पर गोलड़ा शरीफ में जाने की कोशिश करता था, हाजिरी दे दूं, लेकिन आमतौर पर यह होता रहा कि जहां मैंने ये कसद किया कि आगे जो लेफ्ट को टर्न आ रहा है गोलड़ शरीफ का, मैं इससे इधर को टर्न ले लेता हूँ और सलाम अर्ज करके फिर लाहौर के लिए निकलूंगा आगे। तो एक बार बिल्कुल नई सरकारी गाड़ी थी, बिल्कुल नई, तो उस मोड़ से कोई 100 गज पहले सडनली मेरी साइड का दरवाजा अपने आप निकला और सड़क पर गिर गया, गाड़ी रोकनी पड़ गई। और उसके बाद ये सोचा कि अब मैं क्या जाऊंगा वहां तक, तो रावलपिंडी में कोई डेंटर देखता हूँ जो इस दरवाजे को फिक्स कर दे दोबारा से। रुक गया मैं, फिर एक बार जाने लगा तो मैं बड़े इत्मीनान से जा रहा था, एक बस आई और मेरे पास से गुजरी लेफ्ट साइड से और सडनली राइट को टर्न ले लिया। तो बावजूद पूरी कोशिश करने के गाड़ी बचा तो ली मैंने, लेकिन उसका लेफ्ट साइड का फेंडर जो था वो फिर भी रगड़ खा गया बस के पिछले हिस्से से। तो बस वाले ने भी बस रोकी, उससे मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ आपको, तो वो बेचारा मेरी उस नरमी और जिस तरह हंसते हुए मैंने पूछा कि क्या हुआ था आपको, तो वो गरीब और परेशान हो गया इस बात पर, तो मुझसे कहने लगा साहब अल्लाह जानता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ, सवारियां बैठी इनसे गवाही ले लीजिए, आपकी गाड़ी तो थी नहीं यहाँ कहीं, तो पता नहीं कैसे लग गई। तो मैंने वो लेफ्ट फेंडर को देखा तो वहां टायर की स्याही लगी हुई थी, तो डेंट तो आ गया लेकिन और कोई नुकसान नहीं हुआ, और टायर पर लगी थी गाड़ी, नहीं जा सका। फिर एक बार ऐसे ही हुआ, फिर मेरा लेफ्ट साइड का फ्रंट फेंडर एक साहब ने मार दिया। तो एक दिन बड़े शाह साहब और मैं पेशावर से वापस आ रहे थे, तो वहां आके मुझे वो किस्से याद आ गए जो पैदल पे हुए थे मेरे साथ। तो मैंने अपने मुर्शिद साहब से कहा, आम हालात में तो हम लिबर्टी नहीं ले पाते थे, लेकिन दौरान सफर थोड़ा सा आदमी मजाज डिफरेंट होता, सुन लेता। तो मैंने भी उसका फायदा उठाया और मैंने कहा कि हजूर, ये आगे एक मोड़ आ रहा है, इस जगह आके मैं जब भी जनाब क़िबला मेहर अली शाह साहब की खिदमत में सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर देने का कसरत करता हूँ, यहाँ हो जाता कुछ ना कुछ और मैं जा नहीं पाता। कहने लगे, नहीं उसमें कुछ भी नहीं है इसी बात से, अब तुम जाओगे तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल। पहले ये यूं होता था कि तुम्हारा हिस्सा बाबा फरीद गंजशेकर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के सिलसिले में रखा है। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अपना खलीफा जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने अपनी जिंदगी में मुकर्रर किया था और वह खलीफा अव्वल कहलाते हैं। पीर मेहर अली शाह साहब को गायबाना तरीके पर ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने अपनी खिलाफत अता फरमाई थी, इसलिए ये खलीफा दोइम कहलाते हैं। तो चूंकि तुम्हारा हिस्सा जनाब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह साहब के सिलसिले में रखा था, तो पीर मेहर अली शाह साहब तुम्हें अपने पास नहीं आने देते थे कि कहीं तुम इनके पास ना बैठे रह जाओ और तुम्हारा हिस्सा तुम्हें ना मिल पाए। तो ये मेहरबानी फरमा रहे थे, उनकी ये इनायत थी तुम पर कि उन्होंने तुम्हें अपने पास आने ही नहीं दिया ताकि तुम अपनी राह खोटी ना कर जाओ और जहां से तुम्हें मिलना है वहां से तुम्हें मिल जाए। अब चूंकि तुम्हें वो हिस्सा तुम्हारा मिल चुका, अब जब भी जाओगे तो बड़ी मोहब्बत से तुमसे मिलेंगे। और वाकईतन ऐसा ही मैंने पाया फिर कि बाद में जब भी मैं वहां हाजिर हुआ, बहुत मोहब्बत फरमाई आपने। ये डिपेंड करता है कि साहिब मजार कौन है और वो किस तरह से बिहेव करेंगे। बड़े बड़े अच्छे साहिब मजार हैं, बहुत आला दर्जे के, इंतहाई आला जर्फ लोग हैं साहिब मजार मैंने पाया इन्हें। एक तो मैंने वाकई आपको ये सुना ही दिया, इसके अलावा और बहुत से हैं, लेकिन बाज़ोकात ऐसा नहीं होता। तो फिर जब हम वहां जाते हैं तो वो हमारे इल्म जो है वो खत्म होता है, तो हम अपने आप को ब्लैंक महसूस करने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ अपने ही सिलसिले के लोगों के पास जाइए आप, अलबत्ता सुन्नत के मुताबिक फातिहा जरूर पढ़ दीजिए हर जगह, वहां दुआ ना मांगिए, फिर फातिहा पढ़िए और अल्लाह के हुजूर ये दुआ कीजिए कि या बारी ताला जो कुछ ये मैंने तेरा कलाम तलावत किया, इसे मैंने तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजूर नजर पेश किया, बतौर नजराना पेश किया, इसे तू कबूल फरमा और इसका सवाब साहिब मजार की रूह को बख्श दे। उसके बाद बाहर आ जाइए, इंशाल्लाह ब्लैंक नहीं होंगे। एक और सवाल है, अकीदत और अकीदे में क्या फर्क है? अब अकीदत तो यह है कि कोई शख्स मुझे भाता है, अच्छा लगता है, उसका अंदाज गुफ्तगु, उसके मैनर्स, उसके एटिकेट्स, उसके इल्म की नवियत और इल्म की हद मुझे बहुत भाती है, तो वो पसंदीदगी है मेरी। अपनी इस पसंदीदगी के तहत जब मैं उस शख्स से मिलना शुरू करता हूं तो उसकी और खूबियां मुझ पर खुलती हैं, तो मेरी पसंदीदगी उस शख्स के लिए मेरी मोहब्बत में तब्दील हो जाती है, तो और मैं उस शख्स के करीब आ जाता हूं अपनी मोहब्बत की वजह से, तो उसकी आदत और अतवार, उसकी खूबियां, उसके तौर तरीके और ज्यादा तफसील से मेरे सामने आते हैं। तो ये मोहब्बत इससे भी अगले दर्जे पे चली जाती है और मैं उसे आइडियलाइज कर लेता हूं, तो वो अकीदत हो गई। जब किसी शख्स से मुझे अकीदत हो जाएगी, उसे मैं आइडियलाइज कर लूंगा, तो लामहाला मैं उसकी नकल करने लगूंगा हर हर तरीके से। ये अकीदत है। मोहब्बत से अगला मकाम, जिसको अंग्रेजी में हम आइडियलाइज करना कहते हैं, उर्दू में उसको हम अकीदत कहते हैं, जिसे हम बतौर रोल मॉडल सेट कर लें अपने लिए, ये प्रोसेस अकीदत है। अकीदा इससे जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। किसी के कहे हुए फरमुदात, किसी के बयान किए हुए असूल या किसी की कही हुई बातें, उसको हम सच जानने लगें, बरहक जानने लगें और उस पर अमल शुरू कर दें, तो ये अकीदा हो गया। सिर्फ ये फर्क है। अकीदत रब से है कि वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, वो मेरा पालने वाला है, ये मेरी अकीदत है। अकीदा ये है मेरा कि रब एक है, उसके अलावा कोई लायक इबादत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी और सच्चे नबी हैं, कुरान आखिरी किताब है और उसके अंदर बयान करदा असूल इस्लाम है, ये मेरा अकीदा है। ये अकीदा क्यों है कि मेरे रब ने यूं फरमाया है, तो अपने रब के कहने पर मैं उसकी कही हुई बातों को सच समझ रहा हूं, उस पर ईमान ले आया हूं, ये मेरा अकीदा है। और अकीदत मेरी यह है कि मेरा रब निहायत मोहब्बत करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है, ये मेरी अकीदत है उसके साथ, ये मोहब्बत है मेरी उसके साथ। क्योंकि वो अपनी सिफात में यकता है, मैं उसे यकता समझता हूं, हर हर तरीके से यकता है, इसीलिए उसके साथ शदीद मोहब्बत है मुझे उससे, और वही मोहब्बत अकीदत है मेरी। बस ये फर्क है दोनों में। इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार शाबान और ज़िलहज पर गुफ्तगू करेंगे।